कहते हैं कि अपने माजी से सीखो और हाल में जिंदगी करो और उम्मीद का दामन मत छोड़ो। और सबसे अहम बात यह है कि कभी भी दुआ करने से और अल्लाह ताला से उम्मीद रखने से मत थको, क्योंकि कहा जाता है मायूसी एक गुनाह है। प्रोग्राम सुबह जिंदगी में बहुत बहुत खुशामदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तेहरान स्टूडियो से प्रोग्राम सुबह ज़िंदगी के साथ, एक खूबसूरत से प्रोग्राम के साथ, एक गर्मा गर्म से प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल खैर खैरियत से बिल्कुल ठीक रहा होंगे। आप लोगों में रुबाब भी आ जाती हैं, कैसे हैं आप?
अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हो? बिल्कुल जी, मैं भी अपने प्यारे प्यारे और अजीज़ नाज़रीन की खिदमत में सलाम अर्ज़ करती हूँ। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और एक हशाश पशाश खूबसूरत सी प्यारी सी सुबह का आगाज़ हमारे और आपके अपने प्रोग्राम सुबह ज़िंदगी के साथ कर चुके होंगे।
बहुत शुक्रिया रुबाब। और इजाज़ साहब ने यहाँ एक बड़ी प्यारी बात लिखी हमें कमेंट में, और उन्होंने कहा है कि जब इंसान एक शख्स जो है घर में अकेला होता है, वो आप लोगों का प्रोग्राम देखे तो बिल्कुल भी तन्हाई का एहसास नहीं होता, ऐसे लगता है कि हम लोग आप लोगों के साथ बैठे हैं। बहुत शुक्रिया। और हम यही चाहते हैं, यही हमारा जो प्रोग्राम का हमारा जो मोटो कहा जाता है,
वो मिशन हमारे प्रोग्राम का यही है। जी बिल्कुल,
क्योंकि हमारे पास वैसे तो कुछ खास चीज आप लोगों को देने के लिए होती नहीं है, और हमारी पूरी ये कोशिश होती है कि जितनी मीठी मीठी और मजेदार किस्म की, अलबत्ते बहुत सी तल्ख बातें भी की जाती हैं और हमें उनको सुनने में बड़ा मजा आता है, क्योंकि जारी बात है जब तक वो कहते हैं तनकीद ना हो तो फिर जो है वो तारीफ का मजा ही नहीं आता। जब जारी पता होगा कि ये कमियां हैं, ये खूबियां, ये खामियां, तो मजा तो उसी टाइम होता है। तो आपका जितना जी भर के जो बात करने का दिल चाहता है, जिस मौजू पर हमारे साथ करें, हम लोग यहाँ पर इसीलिए बैठे हैं, फेसबुक मेरे सामने खुली हुई है, आप सिर्फ कमेंट करेंगे और एंटर दबाएंगे तो आपका कमेंट हमारे पास पहुंच जाएगा और हम इंशाल्लाह यहाँ पर प्रोग्राम में अपने दूसरे नाज़रीन के साथ भी उसको शेयर करेंगे। यहाँ पर एक बड़ी प्यारी बात लिखी हुई है रुबाब, और वो ये लिखी हुई है कि उम्मीद का दामन इत्तफाकन अंधेरों में नहीं छोड़ना चाहिए। लोग जब परेशानियां आती हैं तो उस टाइम पे मायूस से हो जाते हैं, थक से जाते हैं, और उम्मीद का दामन जो है वो छोड़ देना और अल्लाह ताला से खुदा ना करे, खुदा ना करे, खुदा ना करे कभी मायूसी हो, कभी ऐसी दिल में बात लानी ही नहीं चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी ज़ात है वो कि आप सोच भी नहीं सकते कि क्या वजह हो सकती है जिसकी वजह से आपकी दुआ या थोड़ी देर से कबूल होती है या कबूल नहीं हो रही। बहुत सी वजूहत होती है, पहले भी बात कर चुके हैं
हम, हमेशा से ही कहा जाता है, बचपन से सुनते आ रहे हैं, कहते हैं खुदा की अंधेर होती है, अंधेर नहीं होती।
बिल्कुल, अलबत्ते इस बात को थोड़ा सा अगर वाज खोल के हम बयान करें तो देर का मतलब जो इसमें है वो ये है कि ये बिल्कुल ऐसा ही है रुबाब, जैसे एक लड़का है और वो चाहता है कि जी मैं जितनी जल्दी हो सके एक मोटर बाइक खरीद लूं, और वो बेचारा कोशिश करता रहता है, पैसे जमा करता है, कभी फिर कोई जरूरत उसे पड़ जाती है, पैसे उसके निकल जाते हैं, और वो फिर आखिर में आके थोड़ा थक जाता है और थोड़ा सा गीला शिकवा अल्लाह ताला के साथ शुरू हो जाता है उसका कि भाई मैं तो इतने दिनों से बाइक। यकीन माने, हकीकत है, मैं अपनी ज़िंदगी के तजुर्बे से बताता हूँ, और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि हमारे प्यार प्यार नाज़रीन जो वहाँ बैठे हुए हैं उनको भी इस बात का इल्म होगा पूरी तरह कि जब जो चीज़ आपके लिए सूदमंद होती है, फ़ायदेमंद होती है और उसका नुकसान नहीं होता, उस वक्त अल्लाह ताला वो चीज़ हमें अता कर देता है। अगर कोई ऐसी चीज़ की आप ख्वाहिश कर रहे हैं जो आपके लिए नुकसानदेह हो सकती
है, आपके हक में बेहतर नहीं हो, अल्लाह हमेशा हमें वही देता है जो हमारे हक में बेहतर हो। हमेशा वो अपने बंदे की बेहतरी चाहता है, अपने बंदे का अच्छा चाहता है, लेकिन हम बंदे हैं, हम फरिश्ते तो खैर नहीं, गुनाह हमसे भी होता है, तो हम ये सोचते हैं कि भाई अल्लाह ने फला मौके पे मुझे फला चीज़ नहीं दी तो भाई उम्मीद का दामन ही छोड़ दिया हमने, या हम वो ईमान जो हमारे अंदर होता है वो ईमान कहीं डगमगा सा जाता है। लेकिन नाज़रीन नहीं, हमें हमेशा उम्मीद का दामन और हमारी उम्मीद सिर्फ अल्लाह से होनी चाहिए, वो हमेशा हमें देता है, लेकिन हमेशा वही बात आ जाती है जो हमारे हक में बेहतर हो हमें वही देता है।
बिल्कुल, और यही एक और दोबारा मैं यही बात कहना चाहूँगा कि रुबाब जितना आप मुश्किल में घिरे हुए हैं क्यों ना हो, जितनी भी आपके आसपास आपको जो है सब अंधेरा नजर आ रहा हो, आप अंधेरे को मत देखें, आप वो जो एक किरण आपको नजर आ रही है आप उसको
उम्मीद की छोटी सी किरण हो।
बिल्कुल, यही मसलन लोग कहते हैं कि यार ये मसला है, ये प्रॉब्लम है, ये हो गया, वो हो गया, मैं किस के किस उस पे बुनियाद पे जो है उम्मीद को रखूं और किस बुनियाद पे जो है ख्वाहिश रखूं कि मैं जोर लगाऊं, कोशिश करूं, तो इत्तफाकन वही वक्त है जब आपको उम्मीद का दामन मजबूती से पकड़ना है ताकि आप वो जो एक किरण आ रही है उस तक पहुंच सकें। बारह हमें बताया जा रहा है रुबाब के ज्यादा आप लोग बातें कर रहे हैं, नाजरीन ने भी कुछ बातें करनी है, तो नाजरीन ने कैसे हमारे साथ बातें करनी है इस वक्फे में देखेंगे कि आप लोग कैसे हमारे प्रोग्राम सुबह जिंदगी तेहरान स्टूडियो में हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। एक और बात रुबाब यहाँ पर कही जाती है और अपने नाजरीन के साथ भी शेयर करूंगा, वो ये लिखी गई है कि परेशानियां मुश्किलात महदूद होती हैं, एक टाइम एक खास वक्त के लिए होती हैं और एक उनकी खास जो है मिकदार होती है, उसके बाद वो खत्म हो जाती हैं, लेकिन उम्मीद लामहदूद है। उम्मीद एक ऐसी चीज है जिसकी कोई कोई कहते हैं ना शुरुआत
सरहद नहीं है।
हाँ, कोई सरहद नहीं है, और अगर आप कुछ दिनों की मुश्किलात के लिए, कुछ मुश्किलात के लिए उम्मीद जिसकी जैसे कि रुबाब ने कहा कोई सरहद नहीं है उसका दामन छोड़ दें,
बिल्कुल तो सही बात नहीं है मेरा।
सही बात नहीं है।
ऐसे इंसान उम्मीद करना छोड़ भी नहीं सकता, क्योंकि देखिए उम्मीद करने के अलावा कोई चारा भी नहीं होता परेशानियों में, क्योंकि परेशानी चीज़ें जो हो गई है उस वक्त आपके साथ हो रही है वो चीज़, तो हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि हम इसको बेहतर कर सकें, उस उम्मीद के बिना पे हम कोशिश करते हैं।
बिल्कुल सही बात रखी आपने, और आरजू भी रखनी चाहिए इंसान को दिल में, ख्वाहिशात को रखना चाहिए कि मैं एक दिन ये करूंगा, एक दिन ये लूंगा, एक दिन यहाँ पहुंचूंगा, और इसमें मेरे ख्याल में जो है इसमें कोई बुरी बात नहीं
है।
रुबाब, इससे पहले कि दोबारा डायरेक्टर साहिबा की आवाज जो है वो ऊंची हो जाए मेरे कान के अंदर, तो हम लोग बताते चलें कि हमारे साथ जो मेहमान हैं हमारे वो हैं डॉक्टर जाफर रजी खान साहब, और इंशाल्लाह वो तर्ज जिंदगी का हमारा आज का दिन है, और इसी दिन के मुतालिक वो जो है कि एक खूबसूरत से मौजू, एक दिलचस्प से मौजू पे वो बात करेंगे। तो रुबाब क्या ख्याल है, चलें एक वक्फा लेते हैं और उसके अंदर जो है हम लोग जाएंगे, हमें जो है दरबंद की सैर करवाई जा रही है। बिल्कुल दरबंद चलेंगे, और दरबंद एक बहुत ही खूबसूरत सी जगह है तेहरान के अंदर, जहां पर छुट्टी के दिन या छुट्टियों के दिन लोग जो है थोड़ा सैर सपाटे के लिए,
पिकनिक स्पॉट है,
पिकनिक स्पॉट है बिल्कुल, और पहाड़ के ऊपर है। तो चलते हैं दरबंद की सैर करते हैं, मिल बैठ के देखते हैं दरबंद में क्या हो रहा है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह ज़िंदगी में बहुत बहुत खुश आमदी। जी एक बहुत खूबसूरत सी सुबह है, जुम्मे का दिन है, हम आपको आज ले आए हैं तेहरान की एक खास बहुत खूबसूरत जगह की सैर करवाने के लिए। जी तेहरान एक बहुत जो है बिजी सिटी है, लोग भी बहुत बिजी होते हैं, लेकिन जो वीकेंड होता है लोग कोशिश करते हैं कि तेहरान के जो शुमाली इलाके हैं जहाँ आबो हवा भी बहुत अच्छी है और जो है खूबसूरती के लिहाज से भी खूब बहुत अच्छे हैं, वहाँ पर लोग जाने अक्सर जो है वो जाते हैं। तो हम भी आपको इस टाइम पे जो है जिस रोड के साथ हम खड़े हैं, ये रोड जा रही है तेहरान के शुमाली इलाकों की तरफ, शुमाली जो हिस्सा है उस तरफ जा रही है। तो आप लोगों को आज हमारा प्रोग्राम ये है कि हम आप लोगों को तेहरान का शुमाली हिस्सा है वहाँ की सैर करवाएं। इस शुमाली हिस्से में दो तीन जगह हैं जो बहुत मशहूर हैं, जिसमें एक ताजरीश है, एक तोचाल है और एक दरबंद है। हम आज आपको जो है तोचाल लेके जाएंगे, तो चलें हमारे साथ और देखते हैं तोचाल कैसी जगह है। जैसे कि हम लोगों ने आपको कहा था कि हम लोग आप लोगों को आज जो है तोचाल लेके आएंगे, हम लोग तोचाल पहुंच चुके हैं। हम लोग इस टाइम पे तेहरान के शुमाल में मौजूद जो बहुत खूबसूरत पहाड़ हैं उनमें मौजूद हैं। आप देख सकते हैं हमारी जो शहर जो है तेहरान, उससे जो है हम काफ़ी ज़्यादा जो है हाइट पर यहाँ पर मौजूद हैं। किसी ने तोचाल अगर आना हो, अगर आपका तेहरान आना हो और फिर आपने तोचाल जाना हो, तो उसमें बड़ा सादा सा उसका रास्ता है कि आप किसी से ये पूछें कि जी हमने जो है विलेंजक जाना है। विलेंजक जब आप पहुंच जाएंगे तो विलेंजक से वहां से आपको पूछना होगा तोचाल कहाँ। ये तोचाल जो जगह है, ये विलेंजक जो तेहरान का हिस्सा है वहीं पर मौजूद है। पर तोचाल पहुंच के जो है थोड़ा सा रास्ता, जैसे आप ये देखते हैं ये एक रोड ना आपको नज़र आ रही है, ये जो है ये हिस्सा जो है कुछ लोग जो है ये पैदल तय करते हैं ताकि जो है पहाड़ के जो है तो पहाड़ के ऊपर पहुँचे, लेकिन कुछ हिस्से तक जो है, क्योंकि जैसे आप देख रहे हैं रोड बनी हुई है, कुछ हिस्से तक जो है बस भी जो है आपको लेके आ जाती है। बहरहाल जो हाइकर और जो क्लाइंबर किस्म के लोग होते हैं वो नॉर्मली जो है वो इस पूरे हिस्से को भी जो है पैदल चल के आते हैं, क्योंकि उसमें वर्जिश हो जाती है। और उसके बाद भी जो है यहाँ पर मुख्तलिफ चीज़ें हैं, रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं और मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें हैं जो हम आपको दिखाएँगे। बहरहाल आए हमारे साथ और चलते हैं तोचाल की सैर करते हैं। ناظرین ہم لوگ جو ہے توچال کے دوسرے مین پوائنٹ پہ پہنچ چکے ہیں. پہلا مین پوائنٹ وہ ہے جہاں پر جو ہے پارکنگ کرتے ہیں لوگ گاڑیاں پارک کر کے اور جو پیدل یا بس کے تھرو جو ہے اس پوائنٹ پہ پہنچتے ہیں. یہ دوسرا پوائنٹ ہے جو اس سے جو ہے ہائٹ میں کافی اونچا ہے اور یہاں پر جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف قسم کی جو یہاں پر ریسٹورانٹس یا جو کافی شاپ ٹائپ کی جو جگہ ہیں یہاں پر موجود ہیں. یہاں پر تھوڑا سا جو ہے لوگ جو ہے کھا پی کے تھوڑا سا لے کے اس کے بعد جو ہے اصل جو کام جو ہائکنگ ہے یا کلائمبنگ کا شروع ہوتا ہے وہ اس کے بعد جو ہے یہاں سے لیفٹ سائڈ پہ جو ہے جب لوگ اوپر جاتے ہیں جہاں پر ایک ٹیلی کیبن بھی ہے اور جو ہے ہائکنگ کا روٹ بھی بنا ہوا ہے. جو لوگ ہائکنگ کے لیے آتے ہیں وہ اس رستے کو جو ہے اوپر والے رستے کو جو ہے ہائکنگ کے تھرو طے کرتے ہیں اور باقی لوگ جو ہے ٹیلی کیبن کا سے لطف اندوز ہوتے ہیں. بہرحال آپ لوگ بھی آئیے چلتے ہیں دیکھتے ہیں ہم لوگ اب کون سے رستے سے جاتے ہیں. جی ناظرین اس ٹائم پہ جہاں پر میں کھڑا ہوں اس کے جو پیچھے والا حصہ ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں سے جو ہائکنگ ٹریک جو ہے وہ شروع ہوتا ہے. اس طرف جو ہے ہائکنگ ٹریک کی طرف لوگ جا رہے ہیں اور ہم اس طرف جو دوسری طرف جو ہے ٹیلی کیبن کا جو پہلا اسٹیشن ہے. اب ابھی یہ چیز جو ہے نقشے پہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ جیسے کہ آپ یہاں نقشے پہ دیکھ سکتے ہیں جو گرین لائن ہے یہاں پر ہم لوگ موجود ہیں. یہ گرین جو ایک لکیر آپ کو نظر آ رہی ہے کافی موٹی سی یہ جہاں پر ہم لوگ موجود ہیں. اور جو فرسٹ اسٹیشن یعنی جو لکھا ہوا ہے فرسٹ اسٹیشن یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اس ٹائم پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں. یہ پہلی جگہ ہے جہاں ٹیلی کیبن جو ہے جہاں سے شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے اوپر جاتا ہے. اب جیسے جیسے آپ اوپر کی طرف دیکھیں گے تو آپ کو جو ہے سیکنڈ اسٹیشن دوسرا جو اسٹاپ ہے وہ نظر آئے گا جو 2480 میٹر کی بلندی پر موجود ہے. اسی طرح جو ہے یہ جو سب لائن ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اوپر کی طرف جاتی جا رہی ہے اور جاتی جائے گی. اسی طرح مختلف اسٹاپ جو ہیں آپ کو ففتھ اسٹاپ نظر آ رہا ہے جو تقریباً 3000 میٹر کی بلندی پہ ہے. اس کے بعد جو ہے اسی طرح اوپر جاتے جائیں گے اور آخر میں جو پہاڑ کے بالکل اوپر جا کے جہاں پر ٹیلی کیبن کا جو 7th stop ہے وہاں پر جب آپ پہنچیں گے تو وہاں پر 3 جو ہے اسٹاپس ہیں جو بہت مشہور ہیں. اس میں ایک جو ہے شان نشین ہے جس کی بلندی جو ہے 3800 میٹر کے قریب ہے. دوسرا جو ہے توچال کا جو اسٹاپ ہے جیسے کہ آپ دیکھ سک رہے ہوں گے 3960 میٹر کی بلندی پہ وہاں پر موجود ہے. اور جو ایک اور جو بہت خیر وہاں پر پہنچ کے جو ویو آپ کو دیکھنے کو ملے گا وہ بہت خوبصورت ہے کیونکہ بالکل پہاڑ کے اوپر جو ہے آپ لوگ موجود ہوں گے. اس کے علاوہ دو جو بہت امپورٹنٹ چیز ہیں جیسے کہ آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ پہاڑ کے بالکل اوپر جہاں پر شان نشین لکھا ہوا ہے اس کے بالکل نیچے لکھا ہوا ہے توچال اسکی ریزورٹ. یہاں پر اسکیئنگ کی جاتی ہے اور بہت زبردست قسم کی اسکیئنگ ہوتی ہے یعنی باگن سردیوں کے موسم میں جو ہے دیکھنے والی جگہ بہت زبردست جگہ. اسی کے ساتھ جو ہے توچال کا ہوٹل بھی موجود ہے وہاں پر بھی جو ہے آپ لوگ جو ہے سٹے کر سکتے ہیں اس ہائٹ پہ جا کے جہاں پر بہت آب و ہوا ہے جو بہت زبردست ہوتی ہے. لیکن توچال اسکی ریزورٹ جو ہے وہ بہت زبردست جگہ ہے یعنی سردیوں میں جو ہے آپ وہاں پر اگر جائیں تو ایک بہت بڑا جو ہجوم ہے لوگوں کا وہاں پر جو ہے اسکیئنگ کرتا ہے. بہرحال ہم لوگ جو ہے ابھی آپ کو جو پہلا اسٹیشن ہے ٹیلی کیبن کا وہ بھی دکھائیں گے اور یہ جو روٹ جو ہے ہائکنگ کا جو اوپر جا رہا ہے اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتائیں گے اور آپ کو دکھائیں گے. تمہارے ساتھ رہیے گا. جی آپ لوگوں نے دربند کی سیر تو نہیں کی توچال کی سیر کی لیکن یہ کہ دونوں جو ہے ملتی جلتی جگہ ہیں. دربند تھوڑا سا جو ہے ہرا بھرا ہے سرسبز ہے. اب وقت ہوا ہے تھوڑا سا سنجیدہ گفتگو کا اور ہم لوگ چلیں گے رباب کی طرف تاکہ رباب جو ہے گفتگو کے سیگمنٹ کو شروع کر سکیں. جی رباب
بہت شکریہ خورم. اور سنجیدہ گفتگو کی طرف چلنے سے پہلے میں ناظرین کو بولوں خورم بالکل مارکو پولو کی طرح ہو گئے ادھر ادھر ہر جگہ موجود ہیں. جی جی ناظرین وقت کو ضائع کے بغیر چلتے ہیں ہمارے معزز مہمان سید جعفر رضی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آج ہفتے کا دن ہے اور ہم طرز زندگی یا لائف اسٹائل کے بارے میں بات کرتے ہیں اور لائف اسٹائل میں سب سے جو اہم موضوع جو ہوتا ہے پلاننگ یا جو ہماری جو ٹائم کی جو اہمیت ہوتی ہے اس کا خیال رکھنا. تو سب سے پہلا سوال ڈاکٹر صاحب میں یہی پوچھوں گی کہ پلاننگ زندگی میں کتنی ضروری ہے؟ جی
دیکھیے سب سے پہلی بات یہ کہ جو پلاننگ ہے اس میں ہم دیکھنے میں آیا ہے کہ جو ہماری موجودہ ینگ جنریشن ہے اس کے پاس ان کے اہداف تو ہیں وہ یہ چاہتا ہے کہ ان کے ڈریمز ہیں بہت سارے جو ہیں خواب ہیں بہت سارے بہت کچھ وہ بننا چاہتے ہیں خواہشات بہت زیادہ ہیں. تو ایکچولی یہ ہوتا ہے کہ جب ان خواہشات تک پہنچنے کے لیے ان اہداف تک پہنچنے کے لیے ان آبجیکٹیوز کو جب وہ فالو کرتے ہیں یا ان کو چیز کرتے ہیں تو اس کے لیے پراپر پلاننگ کا ہونا جو ہے وہ ضروری ہے. اگر پراپر پلاننگ نہیں ہوگی तो हमारी जो यंग जनरेशन है उसके अंदर जो है वो एक मायूसी की फ़ज़ा जो है और नाउमीदी की जो है एटमॉस्फेयर जो है वो उनको जो है घेर लेगा, एक नाउमीदी घेर लेगी। तो इसलिए कि नाउमीदी से बचने के लिए अपने आदाफ तक पहुंचने के लिए एक प्रॉपर प्लानिंग का होना और उस प्लानिंग के साथ जो है उन एक्सपर्टीज़ और स्किल्स का होना जो उन आदाफ तक पहुंचने के लिए ज़रूरी है, और एक टाइमिंग प्रॉपर टाइमिंग का होना जो है वो ज़रूरी है। अनफॉर्चुनेटली जो मौजूदा हमारी यंग जनरेशन है उनके पास ख्वाब तो है, ऑब्जेक्टिव्स तो हैं, लेकिन वो प्लानिंग नहीं है। वो ये नहीं सोचते कि उस हदफ तक पहुंचने के लिए कि उन्हें कौन सी महारत और स्किल्स की ज़रूरत है और कैसे ज़िंदगी में जो है वो डिसिप्लिन करना है। तो इसलिए ज़रूरी है कि ये बातें जो है शुरू से ही बचपन से ही उनको जो है जो वालदैन जो उन बच्चों को ब्रॉट अप कर रहे हैं उनके अंदर जो है वो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक प्लानिंग का जो है वो एक टाइम टेबल उनके लिए, और ये कि आहदाफ तक पहुंचने के लिए जो है वो एक टाइम ख़ास जो है उसकी रिक्वायरमेंट है। अनफॉर्चुनेटली मौजूदा जो है वो आप देखते हैं कि जो हमारा कल्चर है उसमें ये है कि सब जो है वो शॉर्ट कट्स के पीछे हैं।
जी बिल्कुल।
जबकि एक आप जब आपने एक हदफ सेट कर लिया, एक गोल सेट कर लिया, उसके लिए अगर एक टाइमिंग की ज़रूरत है, फ़र्ज़ करें कि 5 साल के अरसे के लिए ज़रूरत है, तो ठीक है आप उसको जो है 2.5 साल के अंदर तय कर सकते हैं न्यू स्किल्स के ज़रिए, एडवांस टेक्नोलॉजी के ज़रिए। लेकिन ये कि बिल्कुल उस के लिए प्लानिंग ना करना, अपने आप को उस हदफ तक पहुंचने के लिए जो स्किल्स और रिक्वायरमेंट है उनको हासिल उनका वसूल ना करना और बग़ैर सिर्फ उसके लिए ड्रीम्स देखना, ये एंड पर जो है एक नौउम्मीदी की फ़ज़ा लाएगा और वो अपने इस तरीके से वो अपने अहदाफ तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। और जो कल्चर जो हमारा कल्चर है जो यानी बेसिकली ये होना चाहिए कि उसको जो है हमें जो हमारी ट्रेडिशंस है वो तो यही सिखाती है कि हमें जो है हार्ड वर्किंग होना चाहिए, हमारे पास प्लानिंग होनी चाहिए, हमारे पास जो है वो टूल्स होने चाहिए उन अहदाफ तक पहुंचने के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मौजूदा जो साल हमारे जो नस्ल चल रही है वो देखने में आता है कि उनके पास सिर्फ हदफ नहीं है, सिर्फ हदफ का मतलब ये है कि ड्रीम्स हैं और उन ड्रीम्स को पहुँचने के लिए जो है वो कोई प्लानिंग नहीं है बल्कि एक शॉर्टकट टाइप जो है वो चाहते हैं कि
बस जल्दी से पहुंच जाए,
जल्दी से उस तक पहुंच जाए और एक चीप रेपुटेशन जो है
बिल्कुल ये
एक बहुत ही कुता मुद्दत में इवन वेल्थ तक पहुंचने के लिए, रेपुटेशन तक पहुंचने के लिए जो है वो भी बस यूँ समझे कि कुछ दिनों की प्लानिंग या प्लानिंग है ही नहीं।
आपने अपनी बातों के बीच में इशारा किया ख्वाब या ड्रीम्स की तरफ, मेरे को यही पूछना था कि लाइक हमारे पास ख्वाहिशात भी हैं, ख्वाब भी हैं, क्या यही काफ़ी है हदफ तक पहुंचने के लिए या जो चीज़ हमारा जो मंजिल है वहाँ तक पहुँचने के लिए, या नहीं और भी कुछ चीज़ की ज़रूरत है, बस ख्वाब देख लिया और हम डॉक्टर बन गए, ऐसा हो सकता है या नहीं?
वही मसला जो है, ये एक मसला तो ये है कि जो हमारा मॉडर्न कल्चर है या यानी जो दुनिया पे अभी जो है छाया हुआ है और जो सेलिब्रिटी कल्चर है, सेलिब्रिटी कल्चर के बहरहाल ये कि जैसा कि आप देख रहे हैं जो कल्चर मूवीज़ में दिखाया जाता है, जो कल्चर हॉलीवुड में दिखाया जा रहा है, जो कल्चर बहरहाल दुनिया के मीडिया बोल रहा है, सिनेमा पे की फ़ज़ा पर जो है वो रायज है, उसमें यही होता है कि वो जो हमारी यंग जनरेशन है वो उससे मुतासर होकर जो है बहरहाल वो सिनेमा वो मीडिया वो अपने आदाफ को जो है मटेरियल हवाले से फॉलो कर रहा होता है। लेकिन अगर एक जनरेशन को, एक सोसाइटी को, एक फैमिली को अपने आदाफ तक पहुंचना है तो उसे जो हमारी ट्रेडिशंस प्लस ट्रेडिशंस को महफूज करते हुए, एडवांस टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तफादा करते हुए, फ़ायदा उठाते हुए, अपने आप को उन स्किल्स के साथ जो है वो इक्विप करते हुए आगे बढ़ना चाहिए।
सही।
तो इस तरीके से वो एक अगर ये बचपन से घर से स्कूल से असातिज़ा के ज़रिए ये बात बच्चों के सिखाई जाती है तो वो जब बड़े होंगे तो ज़हरी सी बात है अगर इस पैटर्न पर चलेंगे तो वो एक मुआशरे के लिए जो है मुफीद फ़र्द साबित हो सकेंगे। और वो अगर इस पैटर्न को फॉलो नहीं करते, एग्जैक्टली जो सिनेमा सिखा रहा है, जो मीडिया सिखा रहा है, जो फ़र्ज़ करें कि वेस्टर्न कल्चर जो मटेरियल जो हो चुका है और जो यानी मटेरियल जो मटेरियल लाइफ है मादी, अगर सिर्फ उसी पे करेंगे तो फिर ये होगा कि आपके अंदर जो है वो एक हीरो बनने की उम्मीद होगी, और ऐसा हीरो जो कि बहरहाल अंदर से खोखला है, जिसके
पास जो फिल्मी पर्दे पे ही अच्छा लगता है,
हाँ, जो सिर्फ जो है वो फिल्म के सीन पे भी अच्छा लगता है और वो मुआशरे में जो है कोई रोल
खास
कोई
नहीं
यूजफुल सिटीजन बनने के काबिल नहीं और दूसरे को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। तो इसलिए हमें ज़रूरी है कि हम अपने जो बच्चे हैं जो अपनी यंग जनरेशन है उनको स्पिरिचुअल वैल्यूज़ मटीरियल नीड्स सब कुछ सिखाएं, उसके बाद प्लानिंग करें, उसके बाद जो है वो उस प्लानिंग तक जो प्लानिंग शॉर्ट टर्म भी हो सकती है, फिर उसके बाद जो है वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग होनी बेसिकली लॉन्ग टर्म ही चाहिए
जी। डॉक्टर साहब
हदफ लॉन्ग टर्म होनी चाहिए, प्लानिंग शॉर्ट
टर्म लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म जो प्लानिंग थी इसके बारे में हम जरूर बात करेंगे। अभी यहाँ पे हमारे पास वक्त हुआ है खोरम के पास चलने का।
जी बहुत शुक्रिया, बड़ी अहम और बड़ी मुफीद और मुख्तसर उसमें नुकात में आप लोग जो है हमारे नौजवानों को गाइड कर रहे हैं। बारह मेरे भी बड़े बहुत ज्यादा सवाल आ रहे हैं और जिसमें एक बहुत अहम सवाल मेरे जहन में ये आ रहा है कि हमारे जवान जो हैं उनको वो सिर्फ फिल्मों से ही क्यों इंस्पायरेशन ले रहे हैं और कोई चीज़ क्या उन्हें नजर नहीं आती। बहरहाल इस पे भी बात कर सकते हैं, आप लोग भी बात कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर चलेंगे थोड़ा सा ताज़ा दम होकर आते हैं, ठंडी ठंडी हवा लेके आते हैं बाहर से, उसके बाद दोबारा जो है गुफ्तगू की तरफ आएंगे। जी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ताज़ा दम हो गए होंगे, फ्रेश हो गए होंगे, पानी के ठंडे ठंडे पानी के छींटे जो है आपके फेस पे आए होंगे, तो आप बहरहाल जो है जाग जाएं। चलते हैं हम दोबारा रुबाब की तरफ ताकि रुबाब गुफ्तगू आगे चला सकें।
जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया खोरम जी। डॉक्टर साहब ब्रेक पे जाने से पहले खोरम ने बहुत अहम सवाल पूछा हमसे, वो ये कि क्यों आजकल की नौजवान नस्ल उनका जो आइडियल या उनका जो आप बोल सकते हैं कि एक तरह से सब कुछ ज़िंदगी का जो है एक फिल्म से या सिनेमा के पर्दे से या वो हीरो जो है वही बन गया है, क्यों किसी और तरीके से जो है वो नहीं लेते ये इंस्पिरेशन।
देखिए आप जो है सिनेमा अगर देखें तो उसमें जो सेलिब्रिटी कल्चर है उसमें जो सेलिब्रिटी फिगर्स हैं वो ज़्यादातर जो है ड्रॉप आउट्स ऑफ स्कूल है, यानी ऐसे लोग हैं जो मदारिस से निकाले हुए हैं।
अच्छा।
और वो जो है हमारे एक्चुअली हीरो हैं।
सही।
तो और वो जो बेसिकली जो सिनेमा इंडस्ट्री मॉडर्न दौर में है उसका जो है वो करना कि नौजवान नस्ल के एहसास को भड़का कर उनके एहसास को जो है यूँ समझे उलझा कर जो है आउट ऑफ दिस जो है वो पैसा कमाना है और मटेरियल आदाफ तक पहुंचना है, पैसा या एक ख़ास कल्चर। अब ये कल्चर मुमकिन है 1% लोगों का हो, 2% लोगों का हो, लेकिन उसको जो है वो हमारी रिवायात पे आज का सिनेमा जो है सिनेमा को ऐसा होना चाहिए कि एक्चुअली वो हमारी ट्रेडिशन को जो है वो रिफ्लेक्ट करें। आज का सिनेमा आज का कल्चर आज का मीडिया जो है वो हमारी ट्रेडिशन से बहुत ज़्यादा दूर हो चुका है और रिलीजियस वैल्यू से तो बिल्कुल ही उसको जो है काट दिया गया है। तो इसलिए जब हम ये कहते हैं कि जब आप 1% को या एक बहुत मादूस सी जो है वो एक लोगों को फॉलो करेंगे और 90 और बहुत सारे लोगों को इग्नोर करेंगे तो उसका नतीजा ये होगा कि वो जब दूसरे उसको फॉलो करेंगे वो चीज़ें जो सिनेमा में दिखाई जा रही हैं जो मूवी में दिखाई जा रही हैं वो अचीवेबल नहीं है, वो एक यानी उसके लिए कोई प्लानिंग नहीं है, वो एक जो है एक हीरो आर्टिफिशियल हीरो जो है वो हमारे सामने जो है वो बना के रख दिए गए। लेकिन अगर हम इल्मी हवाले से एकेडमिक हवाले से साइंटिफिक हवाले से ये देखें कि ये हमारे जो है इस खुद इस्लाम खुद हमारा दीन खुद हमारी रिवायत खुद हमारी ट्रेडिशन जो है वो साइंटिफिक अप्रोच को जो है वो तायद करती है। लेकिन जो है वो एक ऐसा हीरो जो मौजूदा सिनेमा इंडस्ट्री में जा चुके इसका हमारे मज़हब से बहुत ज़्यादा जो है वो दूर है। तो हमें ये चाहिए कि एक साइंटिफिक अप्रोच को ले और जो एजुकेशन है उसको जो है मुआशरे में डेवलप करें।
सही।
और आदाफ बच्चों को जो है वो सिखाएं कि कैसे सेट करने हैं।
और उन आदाफ के बीच में मैं यही सवाल पूछना चाहूंगी कि ये जो हमारे पास
रियल आदाफ भी रियल हो प्लानिंग भी रियल हो,
मुझे यही पूछना था कि ये कहाँ से बच्चों में आजकल की नौजवान नस्ल तो खैर खुद से खैर नहीं सीखती, क्या हमारे घर का माहौल ऐसा है हम यानी इस तरह बोल सकते हैं कि माएँ या तो टेलीविजन इतना देख रहे हैं या वो फिल्में इतना देख रहे हैं कि बच्चों पर वो उसका असर पड़ रहा है, वो बड़े चल के बड़े होकर वो फिर वही जो सिनेमा कल्चर के पीछे भाग रहे हैं, कि घर का भी इसमें कोई ख़ास रोल हो सकता है।
देखिए एक तो ये कि हम ये तो नहीं कह सकते कि जो मौजूदा बहरहाल एक जो है वो स्कूल का रोल है, सिनेमा का रोल है,
जी
पेरेंट्स का रोल है,
अच्छा
ठीक है। तो इसमें ये प्रोपोर्शन एक तनासब होना चाहिए कि
ठीक
कितने परसेंट होना चाहिए, और जब वो हद से ज़्यादा बढ़ जाएगा तो जो हमारी जो नौजवान नस्ल है, जो हमारी यंग जनरेशन है, उनके
जी
अदाफ जो है डैमेज हो जाएंगे।
ठीक है
तो ये कि मौजूदा अगर मीडिया ये है कि आप करंट अफेयर से अपने आप को आशना रखें तो ये एक ज़रूरत है,
ठीक, अलग
ठीक है
भैंस
ना
है वो अपने
जी।
जी
बिल्कुल, उसके साथ जो है आप अपने जो है स्कूल के जो आपका कुरिकुलम है या स्कूल
जी
का जो कोर्स है उसको भी आप जो है साथ साथ चला रहे हैं।
ठीक है
उसके साथ जो आपके अब्लिगेशंस हैं, घर के अब्लिगेशंस या जो आपके मुआशरे के अब्लिगेशंस हैं,
जी
वो भी आप साथ लेके चल रहे हैं। आप बच्चों को जो रिवायात और जो वैल्यूज़ हैं हमारी जामे की, ट्रेडिशन की, उसको भी लेके आगे बढ़ रहे हैं,
जी
और उसके साथ इन चीज़ों को, इन वैल्यूज़ तक पहुँचने के लिए, उस कुरिकुलम को अचीव करने के
जी
लिए, उस को जो है हाई लेवल एजुकेशन तक पहुँचने के लिए
जी
आप बच्चों को कोई जो है स्किल्स के साथ इक्विप कर रहे हैं। उनको कोई ऐसा शॉर्टकट जंप नहीं सिखा रहे कि
जी
जिसमें वो जो है वो
जंप करके चले
एक
जाए उस
हाँ
तरफ,
अनरियलिस्टिक अप्रोच जो
जी
है
जी
उनको नहीं बताएंगे। तो आप देखेंगे कि यही जो जो है ये बड़े होके इस मुआशरे के लिए, एक जो पूरी दुनिया की सोसाइटी है उसके लिए यूज़फुल साबित हो सकते हैं।
सही
इसलिए ज़रूरत है कि जो साइंटिफिक अप्रोच के साथ साथ, ट्रेडिशन के साथ साथ जो है
जी
इन लोगों को जो है
जी
मैदान में आने की जो है वो इनक्रेज किया जाए।
जी
लेकिन उसकी बजाय अगर आप सेलिब्रिटी कल्चर को रैज करते हैं, आप अनरियलिस्टिक अप्रोचेस को मुआशरे में फैला रहे
जी
हैं, क्विक रिच स्कीम्स को कर रहे हैं,
जी
मिलियनियर मिलियनियर का कल्चर जो है, एक ही शब्द में मिलियनियर बन जाना,
जी
कैसे पैसे तक पहुंचना,
जी
कैसे जो है वो एक हीरो, अनरियलिस्टिक हीरो बनना,
जी
ये सारे जो है हमारे मुआशरे को जो है वो
डैमेज कर रहे हैं,
डैमेज कर रहे
बिल्कुल
हैं।
ठीक है
तो इसलिए हमें जो है वेस्टर्न कल्चर से अलग जो हमारे मुआशरे हैं जिनमें रिवायात, जिनमें सुन्नत, जिसमें वो रहा है कि अलबत्त जो वो कल्चर है वो एक महदूद लोगों के लिए
जी
है, एक जो है जो इंसानी मुआशरे और इंसानी वैल्यू से बहुत जगहों पे क्लैश करता है।
जी
जहाँ पे क्लैश नहीं करता उसकी अच्छी चीज़ें जो है हमें अडॉप्ट करनी चाहिए,
जी
और वो क्या होगा, वो जो मौजूदा जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी उसको अडॉप्ट करना चाहिए, मॉडर्न साइंटिफिक अप्रोच उसको अडॉप्ट करना चाहिए,
जी
लेकिन जो अनरियलिस्टिक सिनेमा या इस किस्म की चीज़ों से जो है वो
दूर रखना चाहिए।
दूर रखना चाहिए
जी डॉक्टर
उसको
साहब,
दिल।
जी बहुत शुक्रिया, बहुत
जी
शुक्रिया। यहाँ वक्त हुआ है हमारे को खुर्रम के पास चलने का, और
जी
खुर्रम आज क्या ताज़ा खबरें लेके आए हमारे
बिल्कुल,
लिए?
मैं ताज़ा खबरें जो हैं आपकी गुफ्तगू से मुतल्लिक की हैं।
जी
और भारत ज़िंदगी में इंसान का शेड्यूल और प्रोग्राम जो है मनसूबाबंदी ठीक हो तो इंसान खुश रहता है, इसी मौजू पे जो है मैं भी थोड़ा सा आपको नुकात कुछ बताऊंगा कि कैसे जो है आप अपनी ज़िंदगी में खुश तो हैं और ज़्यादा खुशहाल हो सकते हैं और आपका पूरा दिन जो है खुशियों से भरा हुआ रह सकता है। सबसे पहले एक जो काम आपने करना है वो ये है कि आपने एक छोटी सी लिस्ट बनानी है जिसमें आपने ये देखना है कि वो क्या काम है, वो क्या बातें हैं, या वो कौन लोग हैं जब आप उनके पास होते हैं तो आपको खुशी का एहसास होता है। उसका लिस्ट बना के वो आपके पास हमेशा होनी चाहिए ताकि आप जब भी सुबह उठें या जब भी आप ऑफिस से वापस आएं तो आपके सामने वो हो और आप उन कामों को करने की कोशिश करें। उसके बाद एक बहुत अहम नुक्ता दूसरा जो है वो ये है कि कभी भी फालतू बैठे मत, सुस्ती को अपने से बिल्कुल दूर कर दें, क्योंकि सुस्ती जो है वो खुशी की, वो हंसने की दुश्मन है, वो आपकी जो ज़िंदगी जो है उसमें सारी जो है मायूसियां और ये चीज़ें ले आएगी। उसके अलावा एक और जो चीज़ बहरहाल कही जाती है इस लिहाज से भी अगर मैं बात करूँ, वो ये है कि कहते हैं कि आप जितना कोशिश करें कि पूरा पेट भर के खाना ना खाएं, हल्का खाना खाएं ताकि आपको जो है वो खाना हैवी करके आपको नींद ना आनी शुरू हो जाए और आप जो है वो अपने जो काम जहाँ पर पहुँचना है उन पर पहुँच ना सकें। उसके अलावा अक्सर ये बात कही जाती है कि माहिर नफ्सियात जो हैं वो ये कहते हैं कि आप जो है ठंडे गर्म पानी से नहाया करें, लेकिन यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका दिन जो है एनर्जी से भरा हुआ और खुशियों से भरा हुआ हो तो आप ठंडे पानी से शॉवर लें बजाय इसके कि गर्म पानी से शॉवर लें। उसके अलावा एक बहुत अहम चीज़ जो हमेशा कही जाती है वो ये है कि आप जितना कम बात करेंगे उतना बेहतर होगा, लेकिन जब भी बात करें ऐसी बात करें कि जिसका आपको कोई फायदा हो, या अगर आपको फायदा नहीं हो रहा तो दूसरे शख्स को उसका जरूर फायदा हो। इसके अलावा एक और नुक्ता ये कहा जाता है कि 10 मिनट का नैप, 10 मिनट अपनी पूरी दुनिया से बाहर आ जाएं, काम की दुनिया, पढ़ाई की दुनिया, जो भी मुश्किलों से बाहर आ जाएं और सूरज की रोशनी के नीचे बैठें और सूरज से एनर्जी लें। टीवी टेलीविजन के बारे में कहा जाता है कि बिल्कुल टीवी को आप लोग बिल्कुल बंद करके रख दें, क्योंकि टीवी जो है वो फिर सुस्ती आपकी जिंदगी में लाता है। आपने जो काम करना है आप करें, आप बाहर बेशक जाएं, आप एंजॉय करें, लेकिन एक्सरसाइज करें, वर्जिश करें, लेकिन ये कि टीवी के सामने बैठ के जो है ये थोड़ा सा जो है गलत तरीका। उसके अलावा कहा जाता है क्रिएटिव होना बहुत जरूरी है। अब क्रिएटिव होने से एक सवाल जो उठता है वो ये उठता है कि जी मुझे तो ना पेंटिंग आती है ना मुझे कोई काम आता है। मैं हर इंसान के अंदर एक आर्टिस्ट छुपा होता है, वो बेशक कुकिंग में हो, आप खाना उठ के बनाना शुरू कर दें, आप अपने जो है गार्डन में जाके जो ग्राउंड है आपके घर के आसपास उसमें जो है वो पौधे वगैरह उनको जो है बार बार पानी देना, ये काम करना शुरू कर देना, तो बारह ये सारी चीज़ें जो हैं आपको मदद करेंगी कि आप खुश रह सकें। और आखिरी नुकता जो है वो ये है कि आपकी जो आपके आसपास कुदरत है, पानी है, दरख्त हैं, चिड़ियाँ, हैवानात जिनको आप देखते हैं, उनसे एनर्जी लें, उनको एंजॉय करने की कोशिश करें, तो आपकी ज़िंदगी हमेशा खुशियों से भरी हुई रहेगी। छोटा सा वक्फा लेंगे यहाँ पर, उसके बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। जैसे कि आप लोगों को पता है कि दूसरी जो मज़े की खबर हम लोग लेके आते हैं वो खाने पीने से मुतालिक होती है। कीवी के जूस के बारे में, माल्टे के साथ मिक्स करें, जिस चीज़ के साथ भी उसको मिक्स करें, कहा जाता है बहुत अच्छा है, क्योंकि जितने भी आपके सांस की नाली के सांस लेने के जो मसाइल हैं उनको हल कर देता है। खांसी हो गई, अस्थमा वगैरह के जो मरीज़ हैं या जिनको सांस लेने में थोड़ी मसला है, जब वो दौड़ लगाते हैं तो सांस उखड़ जाता है, उनके लिए बहुत अच्छा है। उसके अलावा कहा जाता है कि जूस अगर आप कीवी का पीएंगे तो क्योंकि वो फौरी तौर पे जो है आपके खून के अंदर शामिल हो जाता है, तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर को नीचे करने के लिए वो बहुत बेहतर होता है। उसके अलावा ये भी कहा जाता है कि हमारा जो दिफाई सिस्टम है बदन का, उसमें जैसे कि हमारे बदन मुख्तलिफ किस्म के टॉक्सिन, मुख्तलिफ चीज़ें बनती रहती हैं और कुछ चीज़ें जो है बैक्टीरियाज की तरफ से आती रहती हैं, उनको ये कम करते हैं। यहाँ तक कहा जाता है कि अगर एक महीने तक आप डेली कीवी का जूस सुबह पियेंगे तो आपके बदन में जितने भी मुख्तलिफ किस्म के टॉक्सिन, जितने भी ऐसी चीज़ें जो आपके बदन के लिए नुकसानदेह हैं, उनको ये धो धा के बाहर निकाल देता है। उसके अलावा ये कहा जाता है कि एंटीऑक्सीडेंट्स जो कैंसर का बाइस बनते हैं या डीएनए में मुख्तलिफ किस्म की मुश्किलात लाते हैं, उनको दूर करने में बहुत मदद देता है। और इसके अलावा ये कहा जाता है कि विटामिन ई की बहुत ज़्यादा मिकदार इसके अंदर पाई जाती है, जिसकी वजह से होता ये है कि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, जहाँ भी आपके बदन में वर्म या बैक्टीरिया की वजह से, वायरस की वजह से कोई भी मसला पेश आया हुआ है तो उसको ये बिल्कुल ठीक कर देता है। एक आखिरी पॉइंट जो मैं कीवी के बारे में बताता चलूँ वो ये है कि जिन लोगों को कब्ज़ का मसला होता है, कीवी के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत अच्छा लैक्सेटिव है। लैक्सेटिव का मतलब ये होता है कि आपकी जो खाने की नाली है उसको ये ऐसा कर देता है, नरम कर देता है कि ताकि आपका कब्ज़ जो है वो बिल्कुल खुल जाए और बिल्कुल ठीक हो जाए। बहरहाल तो कोशिश कीजिए आज जो है कीवी का जूस पीजिए, और बहरहाल जो हर रोज़ हम आपको बताते हैं चीज़ें उनको नोट करें और आप जो है सेहतमंद बनने की कोशिश करें। चलते हैं रुबाब की तरफ ताकि रुबाब गुफ्तगू को आगे चला सकें।
बहुत शुक्रिया खुर्रम जी। डॉक्टर साहब हमारे साथ ही बता रहे हैं, एक मिनट वक्त है हमारे पास, एक आखिरी जुमला हमारे अजीज नाजरीन जो भी देख रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे?
मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप अपने बच्चों के लिए जो भी हदफ सेट करें कि उन्हें डॉक्टर बनना है, उन्हें इंजीनियर बनना है, या जिसकी बच्चे के अंदर जो टैलेंट है उसको देख के कि उसे सोशल एक्टिविस्ट बनना है, उसे मुआशरे से पावर्टी को ख़त्म करना है, उसे मुआशरे में एजुकेशन फैलाना है, जो भी उसका हदफ है उसको ये बताएँ कि उस हदफ तक पहुँचने के लिए उसे कौन सी प्लानिंग की ज़रूरत है, और उस हदफ तक पहुँचने के लिए वो लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म सारी चीज़ों को और वो स्किल्स जो उसको रिक्वायर है उसको वालदैन भी हेल्प करे, वो जो स्कूल है वो भी उस पर कंट्रीब्यूट करे, खुद मुआशरा भी जो है उसको फैसिलिटेट करे उसके हदफ तक पहुंचने के लिए। और जहरी सी बात है जो उसके लिए जितनी टाइमिंग की, जितनी प्लानिंग की रिक्वायरमेंट है, और इस तरीके से वो जो है उस हदफ तक पहुंचेगा बगैर मायूसी के, बगैर नाउम्मीदी
के। इंशाल्लाह हम भी यही उम्मीद करते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत ही बेहतरीन गुफ्तगू रही आपके साथ। नाज़रीन हमारे साथ डॉक्टर जाफर अजी खान साहब थे और बहुत ही बेहतरीन गुफ्तगू रही, आपका शुक्रिया अदा करूंगी। चलते हैं खुर्रम के पास। जी खुर्रम
जी बहुत शुक्रिया, मैं भी खुदाफिसी करता हूँ आप सबसे और डॉक्टर साहब से, कितनी खूबसूरत और उतनी मुफीद डॉक्टर साहब ने गुफ्तगू बहरहाल हमारे प्रोग्राम में की। चलते हैं यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा लेंगे, उसके बाद आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। बहरहाल मैंने रुबाब से खुदाफिसी नहीं की, मैं और रुबाब यहाँ पर आपकी खिदमत में मौजूद होंगे। जी नाज़िर खुश आमदीद आपको कहता हूँ प्रोग्राम में। और फैसल साहब ने, फैसल बलोच साहब ने हमें यहाँ पर कमेंट दिया और उन्होंने कहा है कि आप आज फ्रेश लग रहे हैं, बहुत शुक्रिया। और उन्होंने कहा दुनिया जो है उम्मीद पर कायम है लेकिन थोड़ा सा डर भी होना चाहिए। बिल्कुल ये बात भी आपने बिल्कुल ठीक की, और इसके साथ आपने कहा है कि प्रोग्राम में किसी आलिम को भी बुलाया जाए। जी बिल्कुल, आलिम को जो आपने आलिम की बात की तो आलिम जो हैं वो हमारे पास फोन लाइन पे मौजूद हैं। हम हर रोज तकरीबन आलिम को, आलिम दीन जो हैं उनको कोशिश करते हैं प्रोग्राम में शामिल करें।
जी आज हमारे साथ मौलाना इकबाल हैदर हैदरी साहब लाइन पे मौजूद हैं, मैं इनकी खिदमत में सलाम अर्ज करती हूँ।
علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
کیسے مولانا صاحب؟ اور بہت بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں وقت دینے کا.
الحمدللہ, آپ سنائیے خرافیات میں.
اللہ کا لاکھ لاکھ شکر. مولانا صاحب, ہمارا ہفتے کا موضوع چل رہا ہے امید کے بارے میں. میرا پہلا سوال آپ سے یہی ہوگا کہ پریشانی میں نا امیدی سے کس طرح جان چھڑائی جائے؟
دیکھیے, اس سلسلے میں مختلف چیزیں بیان کی جا سکتی ہے کہ جب انسان کو پریشانی پیش آتی ہے تو سب سے پہلا مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ وہ صرف اور صرف خدا کے اوپر توکل اور بھروسہ کرے. جب انسان خدا کے اوپر توکل اور بھروسہ کرتا ہے تو خداوند عالم بھی اس کی مدد کرتا ہے اور اس کو مشکلوں سے نجات دیتا ہے. جب انسان ایک ایسی مشکل پیش آتی ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ یہ سوچتا ہے کہ اس سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے, تو پھر وہ چاہتا ہے کہ خداوند عالم سے لو لگائے اور خداوند عالم سے اس مشکل سے نکلنے کے لیے دعا مانگے اور خداوند عالم بھی اس کی دعا کو سنتا ہے. چونکہ خداوند عالم نے متعدد ایسے مواقع پیش آئے ہیں کہ جن میں فرمایا ہے کہ میرے بندے کو مشکلات میں گھبرانا نہیں چاہیے. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے, چونکہ خدا کی رحمت ضروری ہے کہ وہ اپنا قدم آگے بڑھائے اور سلسلے میں جد و جہد کرے, کوشش اور صحیح اور تلاش کرتا ہوا نظر آئے, تب اس کی وہ آرزو پوری ہو سکتی ہے. ورنہ اگر انسان اپنے دل میں آرزوؤں کا ایک بہت بڑا آرزوؤں کے سلسلے میں بہت زیادہ آرزوئیں رکھتا ہو تو پھر اس کے لیے وہ کوئی مفید ثابت نہیں ہو سکتی. آرزو کے لیے ضروری ہے کہ وہ جد و جہد کرے اور اس سلسلے میں کام کرے اور اپنا قدم آگے بڑھائے. صحیح.
مولانا صاحب, کچھ دنیاوی آرزوئیں ہیں اور کچھ آخرت کی آرزوئیں ہیں, کیسے ان دونوں کے درمیان بیلنس رکھا جائے؟ کیا دونوں ہونی چاہیے, یعنی صرف آخرت کی آرزوئیں انسان کے ذہن میں ہو؟
دیکھیے, آرزو ہوتی ہے, چاہے وہ دنیا کی آرزو ہوتی ہے ہو یا آخرت کی آرزو ہو. البتہ آخرت کی آرزو دنیا کی آرزو پر مقدم ہوتی ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم دنیا کی جو آرزوئیں ہیں ان کو بالکل ترک کریں. لیکن اس سلسلے میں جو میں نے عرض کیا امام علیہ الصلوۃ والسلام کا قول ہے کہ ہمیں جو آرزو اس دنیا کی ہے اس سلسلے میں جد و جہد سے کام لینا ہوگا. آرزو کی جہاں پہ مذمت کی گئی ہے کہ لمبی لمبی آرزو انسان نہ کرے, وہ اسی وجہ سے ہے کہ انسان جب آرزو کرتا ہے اور فقط بیٹھا رہتا ہے.
مولانا صاحب,
بیٹھنا اس کے لیے جو ہے وہ مناسب نہیں ہے, بلکہ اس کے لیے جد و جہد کرنا
بہت
قدم ضروری ہے.
بہت بہت شکریہ مولانا صاحب, بہت مفید آپ کے ساتھ گفتگو رہی. تھوڑا سا ٹائم ہے لیکن آپ نے بہت اچھے پیغامات جو ہے ہمارے نوجوانوں کو اور ہمارے ویورز کو دیے. بہت شکریہ مولانا صاحب, بہت شکریہ. جی
میں فوراً کل کا موضوع اعلان کرتی چلوں چونکہ ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے. ڈاکٹر آہلا حکیمی ہمارے ساتھ موجود ہوں گی اور انشاءاللہ ہم بچوں کے نمونیا کے بارے میں بات کریں گے.
اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. کل تک کے لیے مجھے اور رباب کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.